ल्यूक, पॉल को मसीह द्वारा अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना गया था। ल्यूक एक यहूदी नहीं था बल्कि एक अन्य जाति और एक चिकित्सक था जो पॉल के साथ उसकी अधिकांश प्रचार यात्राओं पर गया था। कुलुस्सियों 4:14 में पॉल ने खुलासा किया कि वह इन शब्दों के साथ ल्यूक की कितनी सराहना करता है। हमारे प्रिय मित्र ल्यूक, डॉक्टर और देमास शुभकामनाएं भेजते हैं। ल्यूक ने आरंभिक उद्धरण में कहा, जैसे जो लोग शुरू से ही प्रत्यक्षदर्शी और वचन के सेवक थे, उन्होंने उन्हें हम तक पहुंचाया। पिछले कुछ समय से सभी चीजों का बारीकी से पालन करने के बाद मुझे भी एक व्यवस्थित विवरण लिखना अच्छा लगा। अंत उद्धरण वह प्रेरितों के काम की पुस्तक, जिसे प्रेरितों के काम के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हमारे बीच घटित हुई बातों के बारे में अपना वर्णन जारी रखता है। जॉन का जन्म मसीह का अग्रदूत जकरयाह अबियाह के दल का और हारून की पुत्रियों में से उसकी पत्नी इलीशिबा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थीं और यहोवा की सब आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चाल चलती थीं, पर इनके कोई संतान न थी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत जकरयाह, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है और तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ तुम्हारे लिए एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम जॉन रखना। वह अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर जाएगा। वह एलियाह की आत्मा और शक्ति में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों के मन को लड़के बालों की ओर फेर दे और अवज्ञाकारियों को धर्मियों की बुद्धि की ओर फेर दे और यहोवा के लिए तैयार की हुई प्रजा तैयार करे, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया कि जिस दिन तक ये बातें न घटे उस दिन तक तुम चुप रहोगे और बोल न पाओगे। उसके खतने के समय उपस्थित लोगों ने उसका नाम जकरयाह रखने का प्रयास किया, लेकिन एलिजाबेथ इसलिए नहीं, उसका नाम जॉन है। इसलिए उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि वह उसे क्या कहलवाना चाहता है, और उसने एक लेखन पट्टिका मांगी और उस पर लिखा, उसका नाम जॉन है। और तुरंत उसका मुंह खुल गया और उसकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर का धन्यवाद करके बोलने लगा और उनके सब पड़ोसियों पर भय छा गया। यीशु का जन्म। गैब्रियल को परमेश्वर की ओर से गलील के नासरत नाम नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम एक पुरुष से हुई थी, और कुंवारी का नाम मरियम था। और वह उसके पास आकर बोला, प्रणाम, हे इष्ट, प्रभु तेरे साथ है। परंतु वह इस बात से बहुत परेशान हुई और यह समझने की कोशिश करने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह पाया है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ। और स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी, इसलिए जो बच्चा उत्पन्न होगा वह पवित्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र मरियम ने कहा, देख, मैं यहोवा का दास हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सीजर ऑगस्टस की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत का नाम लिखा जाए। सो यूसुफ भी गलील से, नासरत नगर से यहूदिया में, दाऊद के नगर में, जो बेतलहम कहलाता है, इसलिए गया कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाए। बच्चे के साथ था, और जब वे वहां थे उसके जन्म देने का समय आ गया, और उसने अपने पहिलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। अब यहोवा का एक दूत पास के चरवाहों को दिखाई दिया और यहोवा का तेज उनके चारों ओर चमका और वे भय से भर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार लाता हूँ जो सभी लोगों, ध्यान दें कि सभी अन्य जातियों सहित के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। चरवाहों ने कहा, आओ हम बेतलहम चलें और यह बात जो घटी है और जिसे यहोवा ने हमें बताया है देखें। और वे फुर्ती से गए और मरियम, यूसुफ और बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाया। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वह बात प्रकट की जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों को आश्चर्य हुआ कि चरवाहों ने उनसे क्या कहा। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने का समय आया तो वे उसे यरूशलेम में ले आए कि उसे यहोवा के सामने चढ़ाएं, कि यहोवा की व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाएं। यरूशलेम में शिमोन नाम एक मनुष्य था और वह धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जोहताया और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर यह प्रकट किया गया था कि प्रभु के मसीह को देखे बिना वह मृत्यु को नहीं देखेगा। और वह आत्मा में मंदिर में आया और जब माता पिता बालक यीशु को व्यवस्था की रीति के अनुसार करने के लिए भीतर लाए तो उसने उसे गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार कुशल से जाने देता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा किया हुआ उद्धार देखा है जो तूने सब देशों के सामने तैयार किया है, वह अन्य जातियों के लिथे प्रकाश और अपक्की प्रजा इसराइल की महिमा के लिथे उजियाला है। जब उन्होंने प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ किया तो वे गलील में अपने नगर नासरत में लौट आए। बच्चा बड़ा हुआ और बलवान हो गया, बुद्धि से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की कृपा उस पर थी। अब उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व पर यरूशलेम जाते थे। और जब वह 12 वर्ष का था, 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में शिक्षकों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न पूछते हुए पाया। और जितनों ने उसे सुना वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित हुए। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं बड़े संकट से तुझे ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना बैप्टिस्ट के पास पहुंचा। वह पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए जॉर्डन के आसपास के पूरे क्षेत्र में गया। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग सीधे करो। हर घाटी भर दी जाएगी और हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा कर दिया जाएगा और टेढ़े-मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएंगे और उबड़-खाबड़ जगहें समतल हो जाएंगी और सभी प्राणी परमेश्वर का उद्धार देखेंगे, यशायाह 40:3 से। तब उसने उस भीड़ से जो उससे बपतिस्मा लेने को निकली थी कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिताया कि आने वाले क्रोध से भागो? इब्राहीम को अपना पिता माने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तक कि अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर को प्रसन्न करने वाले अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति को अपने सोचने और कार्य करने के तरीके को पापपूर्ण जीवन से बदलकर धार्मिक जीवन जीना चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। सुसमाचार सुनाते समय लोग अपने मन में यूहन्ना के विषय में प्रश्न करते थे कि क्या वह मसीह है। यूहन्ना ने उन सबों को उत्तर देते हुए कहा, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे अधिक सामर्थी है और जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया था और प्रार्थना कर रहा था, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यीशु जब उसने अपना मंत्रालय शुरू किया लगभग 30 वर्ष का था। यीशु ने अपना मंत्रालय शुरू किया। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जॉर्डन से लौटे और जंगल में 40 दिनों तक आत्मा के नेतृत्व में शैतान द्वारा प्रलोभित किए गए। और जब शैतान हर परीक्षा को समाप्त कर चुका तो उचित समय तक उसके पास से चला गया। यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौट आया और उसके विषय में चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता था और सब उसकी महिमा करते थे। यीशु गलील में नासरत के घर वापस गया और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोली और उसे वह स्थान मिला जहां लिखा था, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे बंदियों को आज़ादी और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करने, उत्पीड़ितों को आज़ाद करने और प्रभु की कृपा के वर्ष का प्रचार करने के लिए भेजा है। उसने पुस्तक लपेटकर सेवक को लौटा दी और बैठ गया और कहा, आज यह पवित्र शास्त्र तुम्हारे सुनने में पूरा हुआ। सभी ने उसकी प्रशंसा की और उसके दयालु शब्दों पर आश्चर्य किया, क्योंकि वे उसे बचपन से जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृहनगर में स्वीकार्य नहीं है। वे उठे और उसे चट्टान से नीचे फेंकने के लिए नगर से बाहर खदेड़ दिया, परंतु वह उनके बीच से होकर चला गया। यीशु उपचार के कई चमत्कार दिखाते हुए कफरनहूम आए। पीटर की सास बी एक कोढ़ी ग एक लकवाग्रस्त व्यक्ति घ एक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना और ई सभी को उसके पास लाया गया। शास्त्री और फरीसी प्रश्न करने लगे कि यह कौन है जो निंदा बोलता है? केवल परमेश्वर के अलावा पापों को कौन क्षमा कर सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आसान है यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठो और चलो? अत उन्होंने कहा, उठो, अपना बिस्तर उठाओ और घर जाओ। अब तुम जान गए हो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। एक दिन यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए रात बिताई। जब भोर हुई तो वह उनके साथ नीचे उतरकर समतल स्थान पर खड़ा हो गया। उसके चेलों की एक बड़ी भीड़ वहां थी और यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सीदोन से बड़ी संख्या में लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से, जो बुरी आत्माओं से परेशान थे, चंगा होने के लिए आए थे। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, धन्य हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तुम तृप्त होगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। धन्य हैं आप जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग आपसे घृणा करते हैं, आपका बहिष्कार करते हैं, आपका अपमान करते हैं और आपका नाम बुरा मानकर अस्वीकार करते हैं। आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। लेकिन धिक्कार है तुम पर जो धनी हो, क्योंकि तुम्हें सुख सुविधा मिल चुकी है। अब तुम अच्छा भोजन पाओगे, क्योंकि तुम भूखे रहोगे। अभी हंसो, क्योंकि तुम शोक मनाओगे और रोओगे। मनुष्य तुम्हारे विषय में अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनके पिताओं ने तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। झूठे भविष्यवक्ता, परंतु जो मेरी सुनते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके साथ भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु ने कहा कि किसी को कैसे प्रेम करना चाहिए, देना चाहिए, न्याय करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए, ईश्वर का स्वभाव। उन्होंने आगे कहा कि लोग आपके कार्यों से यह बता सकते हैं कि कोई ईश्वर के स्वभाव के अनुसार जी रहा है या नहीं। अच्छा व्यक्ति अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छाई पैदा करता है और बुरा व्यक्ति अपने बुरे खजाने से बुराई पैदा करता है, क्योंकि हृदय की प्रचुरता उसके मुंह पर आती है। यह उन बुनियादों पर निर्भर करता है जिन पर उनका जीवन बना है। सेंचुरियन की नींव बहुत मजबूत थी क्योंकि उसने कहा था, मैंने आपके पास आने का अनुमान नहीं लगाया था, परंतु वचन कह और मेरा दास चंगा हो जाए। जॉन बैप्टिस्ट ने अपने एक शिष्य को यीशु से यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आप ही आने वाले हैं या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें उत्तर देने के बजाय यीशु ने कहा कि देखो मैं क्या करता हूँ और क्या सिखाता हूँ। उनके जाने के बाद उसने भीड़ से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, तो भी परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह उससे भी बड़ा है। सभी लोगों ने, यहाँ तक कि महसूल लेने वालों ने भी, जब यीशु के शब्द सुने तो उन्होंने स्वीकार किया कि परमेश्वर का मार्ग सही था, क्योंकि उन्हें यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। परंतु फरीसियों और कानून के विशेषज्ञों ने अपने लिए परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया था। यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में खुशखबरी का प्रचार करते हुए शहर शहर घूमने लगे। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी और लोग शहर दर शहर यीशु के पास आ रहे थे। उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया, एक किसान ने अपना बीज बोया, कुछ बीज रास्ते पर गिरे, ख चट्टानों पर, ग कांटों पर और घ उपजाऊ मिट्टी पर, जिससे फसल पैदा हुई, जितना बोया गया था उससे 100 गुना अधिक। उनके शिष्यों को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने समझाया, ए कुछ लोग केवल बोले गए शब्दों को सुनते हैं, बी कुछ सुनते हैं और कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, सी कुछ ने जो सुना है उसे स्वीकार करते हैं लेकिन धन और सुख को चुनते हैं, और डी कुछ नेक और अच्छे के साथ जो मन में रहते हैं, वे वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और धीरज से फल उपजाते हैं। वह तूफान को शांत करने, राक्षस ग्रस्त व्यक्ति को ठीक करने, मृतकों को जीवित करने और हजारों लोगों को खाना खिलाने जैसे चमत्कार दिखाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करता रहा। उनके शिष्यों ने ये सभी चमत्कार देखे, लेकिन उन्हें अपना विश्वास बढ़ाने के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसलिए यीशु ने उन्हें ठीक करने की अपनी शक्ति देकर दो दो करके भेजा। एक बार जब यीशु अकेले में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, भीड़ मुझे कौन कहती है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, अन्य लोग एलिया कहते हैं, और अन्य कि बहुत पहले के भविष्यवक्ताओं में से एक जीवन में वापस आ गया है। लेकिन आपका क्या चल रहा है? उसने पूछा। आपको किसने कहा कि मैं कौन हूँ? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। यीशु ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को न बताएं। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र को बहुत सी यातनाएं उठानी होंगी और पुरनिये प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ ठहराएंगे और वह मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उसने उन सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। एक आदमी के लिए इससे क्या फायदा कि वह पूरी दुनिया हासिल कर ले और फिर भी खुद को खो दे या खो दे? यदि कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जित होता है, तो मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी महिमा में और अपने पिता और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा, तो उससे लज्जित होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं वे परमेश्वर का राज्य देखे बिना मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। यीशु ने यह कहने के लगभग 8 दिन बाद पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लिया और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसके कपड़े बिजली की चमक की तरह चमक उठे। दो व्यक्ति मूसा और एलिया शानदार वैभव में यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उसके प्रस्थान के बारे में बात की जिसे वह यरूशलेम में पूरा करने वाला था। पतरस और उसके साथी बहुत नींद में थे, परंतु जब वे पूरी तरह जाग गए तो उन्होंने उसकी महिमा और उन दो व्यक्तियों को उसके साथ खड़े देखा। जब वे लोग यीशु के पास से जाने लगे तो पतरस ने उससे कहा, हे स्वामी, हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है। हम तीन झोपड़ियाँ बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा है। जब वह बोल रहा था तो एक बादल प्रकट हुआ और उसने उन्हें ढक लिया, और जब वे बादल में घुसे तो डर गए। बादल में से एक आवाज आई, यह मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है, उसे सुनो। जब आवाज ने बात की तो उन्होंने पाया कि यीशु अकेला था। चेलों ने यह बात अपने तक ही रखी और जो कुछ उन्होंने देखा था उस समय किसी को नहीं बताया। जैसे ही उसे स्वर्ग में उठाए जाने का समय आया, यीशु दृढ़तापूर्वक यरूशलेम के लिए निकल पड़ा और उसने आगे दूत भेजे जो सामरी गांव में उसके लिथे भोजन तैयार करने को गए, परंतु वहां के लोगों ने उसका स्वागत न किया क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। जब शिष्यों याकूब और यूहन्ना ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें नष्ट करने के लिए स्वर्ग से आग बुलाएं? परंतु यीशु ने पलटकर उन्हें डांटा और वे दूसरे गांव में चले गए। इसके बाद यहोवा ने 72 अन्य लोगों को नियुक्त किया और जिस जिस नगर और स्थान में वह जाने वाला था वहां उन्हें अपने आगे दो दो करके भेज दिया। उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर कम हैं। इसलिए फसल के भगवान से अपने फसल क्षेत्र में श्रमिकों को भेजने के लिए कहें, जाना, मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। पर्स या बैग या सैंडल न लें और सड़क पर किसी का अभिवादन न करो। जब आप किसी घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले कहें, इस घर को शांति मिले। यदि कोई शांति पुरुष वहां हो तो तुम्हारी शांति उस पर टिकी रहेगी, यदि नहीं तो यह आपके पास वापस आ जाएगा। उस घर में रहो और जो कुछ वे तुम्हें दें वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। एक घर से दूसरे घर न घूमें। जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो और तुम्हारा स्वागत हो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां जो बीमार हैं उन्हें चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। परंतु जब तुम किसी नगर में प्रवेश करो और तुम्हारा स्वागत न किया जाए तो उस नगर की सड़कों पर जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पैरों पर चिपक जाती है हम तुम्हारे विरुद्ध पोंछ देते हैं। तो भी इस बात का निश्चय रखो, परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की अपेक्षा सदोम के लिए यह अधिक सहने योग्य होगा। जो तेरी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, परंतु जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे भी अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। वे 72 प्रसन्न होकर लौटे और बोले, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे अधीन हो जाती हैं। उसने उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। फरीसियों और कानून के विशेषज्ञों द्वारा अस्वीकृति। एक अवसर पर कानून का एक विशेषज्ञ यीशु की परीक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ। गुरु, उसने पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कानून में क्या लिखा है? उसने जवाब दिया। आप इसे कैसे पढ़ते हैं? उसने उत्तर दिया, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यीशु ने उत्तर दिया, तुमने सही उत्तर दिया है, ऐसा करो और तुम जीवित रहोगे। लेकिन वह खुद को सही ठहराना चाहता था, इसलिए उसने यीशु से पूछा, और मेरा पड़ोसी कौन है? उत्तर में यीशु ने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और लुटेरों के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, उसे पीटा और उसे अधमरा छोड़कर चले गए। एक पुजारी उसी सड़क से जा रहा था और जब उसने उस आदमी को देखा तो वह दूसरी तरफ से गुजर गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उस स्थान पर आया और उसे देखा और दूसरी ओर से चला गया। परंतु एक सामरी यात्रा करते हुए वहां आया जहां वह पुरुष था और जब उसने उसे देखा तो उस पर तरस खाया। वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और दाखमधु डालकर पट्टी बांधी। तब वह उस मनुष्य को अपने गधे पर बिठाकर एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। अगले दिन उसने दो चांदी के सिक्के निकाले और सराय वाले को दे दिए। उसका ख्याल रखना, उसने कहा, और जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारा जो भी अतिरिक्त खर्च होगा मैं तुम्हें चुका दूंगा। तुम्हारे विचार से इन तीनों में से कौन उस आदमी का पड़ोसी था जो लुटेरों के हाथ लग गया था? कानून के विशेषज्ञ ने उत्तर दिया, जिसको उस पर दया हुई। यीशु ने उससे कहा, जाओ और वैसा ही करो। यीशु एक ऐसे दुष्टात्मा को निकाल रहा था जो मूक था। जब दुष्टात्मा चली गई तो वह मनुष्य जो गूंगा था बोला और भीड़ चकित हो गई। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, वह दुष्टात्माओं के राजकुमार बीलजेबूब की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है। दूसरों ने स्वर्ग से चिन्ह मांगकर उसकी परीक्षा ली। जब भीड़ बढ़ने लगी तो यीशु ने कहा, यह दुष्ट पीढ़ी चमत्कार का चिन्ह मांगती है, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ किसी को यह न दिया जाएगा। क्योंकि जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए एक चिन्ह था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह होगा। संकलक की टिप्पणी, उन्होंने यीशु के चमत्कारों को ईश्वर की ओर से आने वाला मानने से इनकार कर दिया। टिप्पणी समाप्त करें। जब यीशु बोलना समाप्त कर चुका तो एक फरीसी ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया, इसलिए वह अंदर गया और मेज पर बैठ गया। परंतु फरीसी ने देखा कि यीशु ने भोजन से पहले स्नान नहीं किया तो उसे आश्चर्य हुआ। तब यीशु ने उन धार्मिक नेताओं की निंदा की जिन्होंने परमेश्वर के कानून के इरादे को बदलने के लिए निंदा की थी। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांझते हो, परंतु भीतर लोभ और दुष्टता से भरे हुए हो। तुम मूर्ख लोग, क्या जिसने बाहर को बनाया उसी ने भीतर को भी नहीं बनाया? परंतु जो कुछ भीतर पकवान है उसे गरीबों को दे दो और तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तुम परमेश्वर को अपने पुदीना, रुई और अन्य सभी प्रकार की उद्यान जड़ी बूटियों का दसवां हिस्सा देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो। आपको पहले को अधूरा छोड़े बिना दूसरे का अभ्यास करना चाहिए था। तुम्हें आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार प्रिय है। तुम अज्ञात कब्रों के समान हो जिन पर मनुष्य बिना जाने चले जाते हैं। आप विशेषज्ञ जो कानून तो जानते हैं लेकिन अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। तुम पर धिक्कार है क्योंकि तुम लोगों पर ऐसे बोझ लादते हो जिन्हें वे कठिनता से उठा सकते हैं और तुम आप उनकी सहायता के लिए एक उंगली भी नहीं उठाओगे। तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए कब्रें बनाते हो और तुम्हारे बापदादों ने ही उनको घात किया। तुम्हारे पुरखाओं ने भविष्यद्वक्ताओं को घात किया। तुम गवाही देते हो कि तुम उन्हें स्वीकार करते हो और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इस पीढ़ी को उन सभी भविष्यवक्ताओं के खून के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो दुनिया की शुरुआत से बहाए गए हैं। तुम कानून के जानकारों पर धिक्कार है क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी छीन ली है। तुम तो आप ही प्रविष्ट नहीं हुए और जो प्रविष्ट हो रहे थे उनको भी तुमने रोका है। जब यीशु वहां से चला गया तो फरीसी और शास्त्री उसका घोर विरोध करने लगे और प्रश्नों से उसे घेरने लगे और इस ताक में थे कि वह जो कुछ कहे उसे पकड़ ले। फरीसियों के खमीर से जो कपट है सावधान रहो। ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट न किया जाएगा, या ऐसा कुछ छिपा नहीं है जिसे प्रकट न किया जाएगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मेरा इनकार करेगा। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ भी कहेगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करेगा, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। ध्यान रहें, हर प्रकार के लालच से सावधान रहें। किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की प्रचुरता में नहीं समाहित होता है। और उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में अच्छी उपज हुई। उसने मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी फसल रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तब उसने कहा, मैं यही करूंगा। मैं अपने खलिहानों को तोड़ डालूंगा और बड़े खलिहान बनाऊंगा और अपना सारा अनाज और माल वहीं रखूंगा। और मैं अपने आप से कहूंगा, तेरे पास बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं, कई वर्षों से पड़ी हुई चीजें आराम से खाओ, पियो और आनंद मनाओ। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे मांगा जाएगा, फिर जो कुछ तूने अपने लिथे तैयार किया है उसे कौन पाएगा? जो अपने लिए तो वस्तुएं संचय करता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है, उसके साथ ऐसा ही होगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता न करो कि तुम क्या खाओगे, और न अपने शरीर की चिंता करो कि जीवन भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। कौवे न तो बोते हैं और न काटते हैं, उनके पास भंडार या खलिहान नहीं है, तो भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम में से कौन चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बहुत छोटी सी बात है, आप बाकी की चिंता क्यों करते हैं? यीशु यरूशलेम की ओर जाते हुए उपदेश देते हुए नगरों और गांवों से होते हुए गए। किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या केवल कुछ ही लोग बचाए जा सकेंगे? को एक बार घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर देगा तो आप बाहर खड़े होकर खटखटाएंगे और गुहार लगाएंगे, सर, हमारे लिए दरवाजा खोल दीजिए। परंतु वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से आए हो? तब तुम कहोगे, हमने तुम्हारे साए खाया पिया और तुमने हमारे चौकों में उपदेश किया। परंतु वह उत्तर देगा, हे सब दुष्टों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से आए हो? बड़ी भीड़ यीशु के साथ यात्रा कर रही थी और उसने उनकी ओर मुड़कर कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता और माता, अपनी पत्नी और बच्चों, अपने भाइयों और बहनों, हाँ, यहां तक कि अपने प्राण से भी घृणा नहीं करता है, तो वह नहीं हो सकता मेरा शिष्य। और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में से जो अपना सब कुछ त्याग नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। संकलक की टिप्पणी, जो स्वयं को मसीह के प्रति समर्पित करता है, उसे उसके आगे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, जीवन की भौतिक चीजें या यहां तक कि परिवार भी नहीं। टिप्पणी समाप्त करें। यीशु ने कहा, एक आदमी था जिसके दो बेटे थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए। इसलिए उसने अपनी संपत्ति उनके बीच बांट दी। उसके कुछ ही समय बाद छोटे बेटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया, एक दूर देश के लिए चला गया और वहां जंगली जीवन में अपना धन बर्बाद कर दिया। जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया तो उस पूरे देश में एक गंभीर अकाल पड़ा और वह मरने लगा। इसलिए वह गया और उस देश के एक नागरिक को काम पर लगा दिया, जिसने उसे सुअरों को चराने के लिए अपने खेतों में भेज दिया। वह उन फलियों से अपना पेट भरना चाहता था जिन्हें सुअर खाते थे, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने मजदूरों के पास खाना बचा है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं निकलूंगा और अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं अब तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक बना। इसलिए वह उठकर अपने पिता के पास गया। परंतु वह अभी भी दूर था कि उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। वह अपने बेटे के पास दौड़ा, उसके चारों ओर अपनी बाहें डाली और उसे चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं अब आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी करो, सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और उसे पहनाओ, उसकी उंगली में अंगूठी और पैरों में सैंडल पहनाओ, पाला हुआ बछड़ा लाओ और मार डालो, आइए दावत करें और जश्न मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जीवित हो गया है, वह खो गया था और मिल गया है। तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस बीच बड़ा बेटा खेत में था। जब वह घर के निकट आया तो उसे संगीत और नृत्य सुनाई दिया, इसलिए उसने एक नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हो रहा है। तुम्हारा भाई आया है, उसने उत्तर दिया, और तुम्हारे पिता ने मोटे बछड़े को मार डाला है क्योंकि वह उसे सुरक्षित और स्वस्थ वापस ले आया है। बड़ा भाई क्रोधित हो गया और उसने अंदर जाने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके पिता बाहर गए और उससे विनती की, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखो, इन सभी वर्षों में मैं आपकी दास्ता करता रहा हूं और कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मना सकूं। परंतु जब तुम्हारा यह पुत्र, जिसने तुम्हारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, घर आता है, तब तुम उसके लिए पला हुआ बछड़ा मार डालना। मेरे बेटे, पिता ने कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, परंतु हमें आनंद करना और आनंद करना अवश्य था, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था और फिर जीवित हो गया है, वह खो गया था और मिल गया है। संकलक की टिप्पणी, इस दृष्टांत में कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे छोटा बेटा केवल अपने बारे में और अच्छा समय बिताने के बारे में सोचता था। कुछ समय के लिए उसके अभिमान ने पश्चाताप को रोक दिया और इस प्रकार वह घृणित कार्य करते हुए आत्मग्लानी में डूबा रहा। ठीक है, अपनी स्थिति को पहचानते हुए उसने बदलाव किया, उसने पश्चाताप किया और विनम्रतापूर्वक बिना किसी शर्त के मदद मांगने के लिए लौट आया। पापों की क्षमा चाहने वाले का रवैया यही होना चाहिए। बड़ा बेटा ईर्ष्यालु था, आत्मदया से भरा हुआ था, अपने भाई के रवैये में बदलाव पर अपने पिता के साथ खुशी मनाने को तैयार नहीं था और नौकर बनने की इच्छा से घर लौट आया। यह जितना मुश्किल था, पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को रुकने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे यह जानने की इजाजत दी कि वह अपने फैसले खुद लेना सीखे, यह जानते हुए कि इससे दुख हो सकता है। बेटे के पश्चाताप और वापसी के लिए पिता की निरंतर इच्छा उसके बेटे को दूर से देखने और देखने से प्रदर्शित होती है। पिता का क्षमा करने का रवैया और पश्चाताप और बेटे की वापसी पर खुशी मनाना वह रवैया है जिसे भगवान ने उन सभी के लिए मनुष्य के पापों के लिए बलिदान देने के लिए यीशु को देने में प्रदर्शित किया था, जो अपने पश्चाताप और उसके पास लौटने के द्वारा उसके प्रेमपूर्ण रिश्ते को बहाल करने के इच्छुक हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। कोई नौकर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या वह एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। आप भगवान और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसियों ने, जो धन से प्रेम रखते थे, यह सब सुना और यीशु का उपहास करने लगे। उसने उनसे कहा, तुम वही हो जो मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मनों को जानता है। जिस चीज को मनुष्यों के बीच अत्यधिक महत्व दिया जाता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जो कोई भी अपनी पत्नी को तलाक देता है, ग्रीक शब्द अपोलुओ से एएसवी और वाईएलटी ने उसे भेज दिया है, और दूसरी महिला से शादी करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो पुरुष एक तलाकशुदा महिला से शादी करता है, वह व्यभिचार करता है। संकलक की टिप्पणी, ग्रीक शब्द अपोलुओ का अनुवाद तलाक के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है तलाक के प्रमाण पत्र के बिना भेजना, वे अभी भी विवाहित हैं। जबकि ग्रीक शब्द अपोस्टेशन तलाक के प्रमाण पत्र के साथ तलाक है, उनकी अब शादी नहीं हुई है। व्यभिचार करना तब घटित होता है जब एक पत्नी को तलाक के प्रमाण पत्र के बिना घर से निकाल दिया जाता है और वह विवाह करती है, जिससे व्यभिचार होता है, क्योंकि वह अभी भी उस पति से विवाहित है जिसने उसे तलाक के प्रमाण पत्र के बिना दूर भेज दिया है। टिप्पणी समाप्त करें। एक अमीर आदमी था जो बैंगनी और बढ़िया मलमल पहनता था और हर दिन विलासिता में रहता था। उसके द्वार पर लाजर नाम का एक भिखारी बैठा था, जो घावों से भरा हुआ था और अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए खाने के लिए उत्सुक था। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटने लगे। वह समय आया जब भिखारी मर गया और स्वर्गदूत उसे इब्राहिम के पास ले गए। वह धनी व्यक्ति भी मर गया और उसे दफना दिया गया। नरक में, जहां वह पीड़ा में था, उसने ऊपर देखा और इब्राहिम को दूर से लाजर के साथ देखा। इसलिए उसने उसे पुकारा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो और लाजर को अपनी उंगली की नोक को पानी में डुबोने और मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए भेजो, क्योंकि मैं इस आग में पीड़ा में हूँ। परंतु इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पाई, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं मिली, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में है। और इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा अंतर ठहराया गया है, कि जो कोई यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से उस पार हमारे पास आ सके। उसने उत्तर दिया, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें सावधान कर दे कि वे भी इस पीड़ा की जगह में न आए। इब्राहिम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और पैगंबर हैं, उन्हें उनकी बात सुनने दीजिए। नहीं पिता इब्राहिम, उसने कहा, लेकिन अगर मृतकों में से कोई उनके पास जाएगा तो वे पश्चाताप करेंगे। उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो चाहे कोई मरे हुओं में से भी जी उठे तो भी उनको विश्वास न होगा। संकलक की टिप्पणी, ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रवेश द्वार पर बेसहारा व्यक्ति के बारे में जानता था, न कि किसी अज्ञात अजनबी के बारे में जिसे वह जरूरतमंद होने का दावा करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अपने आसान जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अपने दरवाजे पर किसी के दुर्भाग्य को पहचानने और उस पर दया करने में असमर्थ थे, जिसने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा का उल्लंघन किया था। टिप्पणी समाप्त करें। जिन चीजों के कारण लोग पाप करते हैं वे तो आती ही हैं, परंतु धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वे आती हैं। इन छोटों में से किसी से पाप कराने की अपेक्षा उसके लिए यह भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। तो अपने आप को देखो, यदि तेरा भाई पाप करे तो उसे डांटे, और यदि वह पछताए तो उसे क्षमा कर दे। यदि वह एक दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करे और 7 बार तुम्हारे पास आकर कहे, मैं पश्चाताप करता हूँ, तो उसे क्षमा कर दो। फरीसियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे सावधानी पूर्वक निरीक्षण से नहीं आता। नहीं लोग कहेंगे यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। संकलक की टिप्पणी, नेता और सभी लोग डेविड की तरह एक सांसारिक राज्य की तलाश में थे। आने वाला राज्य कोई सरकार और शासक नहीं है, बल्कि ईश्वर के स्वभाव में दृष्टिकोण और जीवन शैली है, प्रेम, शांति, दया, सच्चाई, विश्वासयोग्यता, मनुष्य के दिल के भीतर की चीजें, आत्मधार्मिकता नहीं। सांसारिक शक्ति की तलाश कर रहे यहूदियों के लिए यह कितना बड़ा झटका था। नहीं यह कोई चर्च भवन, अभयारण्य या कोई धार्मिक संगठन है, बल्कि एक जीव है लोगों का एक कामकाजी निकाय है। टिप्पणी समाप्त करें। कुछ लोगों को जो अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखते थे और हर किसी को तुच्छ समझते थे, यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। दो आदमी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, एक फरीसी और दूसरा कर वसूलने वाला। फरीसी खड़ा हुआ और अपने बारे में प्रार्थना की, भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों, लुटेरों, दुष्टों, व्यभिचारियों या यहाँ तक कि इस कर संग्रहकर्ता की तरह नहीं हूँ। मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ और जो कुछ मिलता है उसका दसवां हिस्सा देता हूँ। परंतु महसूल लेने वाला दूर खड़ा रहा। उसने स्वर्ग की ओर भी न देखा, परंतु अपनी छाती पीटकर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरे के बजाय यह आदमी भगवान के सामने न्यायसंगत होकर घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। किसी ने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी युवावस्था से ही व्यवस्था का पालन करता आया हूँ। यीशु ने उत्तर दिया कि कानून का पालन करके आप अनंत जीवन अर्जित नहीं कर सकते। आपको अपने धन पर निर्भर न रहकर उसके जैसा बनने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। यीशु ने बारहों को एक तरफ ले जाकर उनसे कहा, हम यरूशलेम को जा रहे हैं और जो कुछ भविष्यद्वक्ताओं ने मनुष्य के पुत्र के विषय में लिखा है वह सब पूरा होगा। उसे अन्य जातियों को सौंप दिया जाएगा। वे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे मार डालेंगे। तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। यीशु ने अपने दो शिष्यों को भेजा, सामने वाले गांव में जाओ और जैसे ही तुम उसमें प्रवेश करोगे तुम्हें वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की होगी। इसे खोलकर यहां ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे तुम इसे क्यों खोल रहे हो, उससे कहो, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जिन्हें आगे भेजा गया उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा उसने उनसे कहा था। जब वे बछेरे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, तुम बछेरे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। वे उसे यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बछेरे पर डाल दिए और यीशु को उस पर बिठा दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया लोगों ने अपने कपड़े सड़क पर फैला दिए। जब वह उस स्थान के निकट आया जहां सड़क जैतून पहाड़ से नीचे जाती है तो शिष्यों की पूरी भीड़ उन सभी चमत्कारों के लिए जो उन्होंने देखे थे खुशी से ऊंचे स्वर में भगवान की स्तुति करने लगी, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। स्वर्ग में शांति और सर्वोच्च में महिमा। भीड़ में से कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा, गुरु, अपने शिष्यों को डांट। मैं तुमसे कहता हूँ, उसने उत्तर दिया, यदि वे चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जैसे ही वह यरूशलेम के निकट पहुंचा और नगर को देखा तो उस पर रोया और कहा, यदि तू ही आज ही जानता होता कि किस बात से तुझे शांति मिलेगी, परंतु अब यह तेरी आंखों से उझल है। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे विरुद्ध बाड़ा बांधेंगे और तुझे चारों ओर से घेर लेंगे। तब तुझे और तेरे बालकों को भी जो तेरी शहरपनाह के भीतर हैं, वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने ऐसा नहीं किया। भगवान के आपके पास आने के समय को पहचाने। फिर वह मंदिर क्षेत्र में घुस गया और बेचने वालों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह लिखा है, उसने उनसे कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तूने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश देता था, परंतु मुख्य याजक, शास्त्री और लोगों के नेता उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। तो भी वे ऐसा करने का कोई उपाय न खोज सके, क्योंकि सब लोग उसकी बातों पर अड़े रहे। उनके कुछ शिष्य टिप्पणी कर रहे थे कि कैसे मंदिर को सुंदर पत्थरों और भगवान को समर्पित उपहारों से सजाया गया था। परंतु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो वह समय ऐसा आएगा कि एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी न छूटेगा, उनमें से हर एक को नीचे फेंक दिया जाएगा। गुरु, उन्होंने पूछा, ये चीजें कब होंगी और इसका क्या चिन्ह होगा कि वे घटित होने वाले हैं? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे तो जान लोगे कि उसका उजाड़ निकट आ गया है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो नगर में हो वे निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि यह सब कुछ जो लिखा गया है उसके पूरा होने पर दंड देने का समय है। जब तक ये सब बातें घटित नहीं हो जाती तब तक यह पीढ़ी निश्चय ही नहीं मिटेगी। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। सावधान रहो अन्यथा तुम्हारे हृदय अपव्यय, नशे और जीवन की चिंताओं से बोझिल हो जाएंगे और वह दिन जाल की भांति अप्रत्याशित रूप से तुम पर आ पड़ेगा। फसह का पर्व निकट आ रहा था। प्रधान याजक और शास्त्री यीशु से छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढ रहे थे क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में प्रवेश कर गया। वह मुख्य याजकों और मंदिर के पहरेदारों के पास गया और उनसे चर्चा की कि वह यीशु को कैसे धोखा दे सकता है। प्रायश्चित बलिदान का समय। तब अखमीरी रोटी का दिन आया, जिस दिन फसह के मेमने की बलि चढ़ाई जानी थी। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह खाने की तैयारी करो। आप कहाँ चाहते हैं कि हम इसके लिए तैयारी करें, उन्होंने पूछा। उसने उत्तर दिया, जैसे ही आप शहर में प्रवेश करेंगे एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए आपसे मिलेगा। जिस घर में वह प्रवेश करे उसमें उसके पीछे हो लेना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु ने पूछा, वह अतिथि कक्ष कहाँ है जहाँ मैं अपने चेलों के साथ फसह खा सकूँ? वह तुम्हें एक बड़ा सा सुसज्जित कमरा दिखाएगा, वहां तैयारी करो। वे चले गए और उन्हें चीजें वैसी ही मिली जैसी यीशु ने उन्हें बताई थीं। इसलिए उन्होंने फसह तैयार किया। जब समय आया यीशु और उसके प्रेरित मेज पर बैठे और उसने उनसे कहा, मैंने बड़ी लालसा की है कि दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ यह फसह खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए तब तक मैं इसे दोबारा न खाऊंगा। और परमेश्वर का राज्य आने तक दाख के फल में से कुछ खाया और रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको दी और कहा, यह मेरा शरीर तुम्हारे लिए दिया गया है, इसी के लिथे ऐसा करो। भोजन के बाद उसने कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे उस लोहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, परंतु जो मुझे धोखा देगा उसका हाथ मेज पर मेरे हाथ के साथ है। मनुष्य का पुत्र तो उसी के अनुसार जाएगा जिसकी आज्ञा दी गई है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जो उसे पकड़वाएगा। यीशु हमेशा की तरह जैतून पहाड़ पर गए और उनके शिष्य उनके पीछे हो लिए। उस स्थान पर पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वह उनसे लगभग एक कदम दूर हट गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे ले ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसे बल दिया और पीड़ा में होकर उसने और भी अधिक गंभीरता से प्रार्थना की और उसका पसीना खून की बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु अभी भी अपने शिष्यों से बात कर ही रहा था कि एक भीड़ आ गई और यहूदा नाम 12 शिष्यों में से एक व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा था। वह उसे चूमने के लिए यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, यहूदा, क्या तू चुंबन के द्वारा मनुष्य के पुत्र को पकड़वा रहा है? वे उसे पकड़कर ले गए और महायाजक के घर में ले गए। जो लोग यीशु की रखवाली कर रहे थे वे उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे पीटने लगे। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और मांग की, भविष्यवाणी करो, किसने आपको टक्कर मारी? और उन्होंने उससे और भी बहुत सी अपमानजनक बातें कहीं। भोर को लोगों के पुरनियों की सभा अर्थात मुख्य याजकों और शास्त्रियों की सभा हुई और यीशु उनके सामने ले जाया गया। यदि आप मसीह हैं, उन्होंने कहा, हमें बताएं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुमसे कहूं, तो तुम मेरी प्रतीति न करोगे, और यदि मैं तुमसे पूछूं, तो तुम उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र पराक्रमी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान होगा। उन सबने पूछा, तो क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं हूं। तब उन्होंने कहा, हमें और गवाही की क्या आवश्यकता है? यह हमने उन्हीं के मुंह से सुना है। तब सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई, और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इस मनुष्य को हमारी जाति का नाश करते हुए पाया है। वह सीजर को करों के भुगतान का विरोध करता है और मसीह एक राजा होने का दावा करता है। अत पीलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ, यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और भीड़ से कहा, मुझे इस मनुष्य पर दोष लगाने का कोई आधार नहीं मिला। जब पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेजा, जिसने उसे बिना न्याय किए पिलातुस के पास लौटा दिया, पिलातुस ने महायाजकों, हाकिमों और लोगों को इकट्ठा करके कहा, तुम इस मनुष्य को मेरे पास ले आए जो लोगों को बलवा करता था। मैंने आपकी उपस्थिति में उसकी जांच की है और उसके खिलाफ आपके आरोपों का कोई आधार नहीं पाया है। हेरोदेस ने भी उसे हमारे पास वापस नहीं भेजा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मौत के लायक हो। अत मैं उसे दंड दूंगा और फिर छोड़ दूंगा। वे एक स्वर से चिल्लाए, इस आदमी को दूर करो। पीलातुस ने यीशु को छुड़ाने की इच्छा से उनसे फिर विनती की, परंतु वे चिल्लाते रहे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तीसरी बार उसने उनसे कहा, क्यों? इस आदमी ने क्या अपराध किया है? परंतु वे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए मांग करने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, और पीलातुस ने उनकी मांग मान ली। जब वे खोपरी नामक स्थान पर आए, तो वहां उन्होंने उसे अपराधियों समेत क्रूस पर चढ़ाया, एक को उसके दाहिनी ओर, दूसरे को उसके बाईं ओर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लोग खड़े देखते रहे और शासकों ने उस पर व्यंग्य भी किया। उन्होंने कहा, उसने दूसरों को बचाया, यदि वह परमेश्वर का मसीह है, चुना हुआ है, तो उसे अपने आप को बचाने। दो सिपाहियों ने भी आकर उसका उपहास किया। उन्होंने उसे दाखमधु का सिरका दिया और कहा, यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा ले। उसके ऊपर एक लिखित सूचना थी जिसमें लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। लूका 23:33-38। अब लगभग छठा घंटा था और नौवे घंटे तक सारे देश में अंधियारा छा गया, क्योंकि सूर्य का चमकना बंद हो गया और मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब उन्होंने यह कहा, तो उन्होंने अंतिम सांस ली। जो कुछ हुआ था उसे देखकर सूबेदार ने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, निश्चय यह एक धर्मी मनुष्य था। जोसेफ, परिषद का सदस्य, एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, जिसने उनके निर्णय और कार्रवाई पर सहमति नहीं दी थी। वह यहूदी शहर अरिंथिया से आया था और वह परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। पीलातुस के पास जाकर उसने यीशु का शव मांगा। तब उसने उसे उतारकर सनी के कपड़े में लपेटा और चट्टान में खुदी हुई एक कब्र में रख दिया, जिसमें अब तक किसी को नहीं लिटाया गया था। वह तैयारी का दिन था और सप्त का दिन शुरू होने वाला था। सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह सुबह महिलाएं अपने द्वारा तैयार किए गए मसाले ले गईं और कब्र पर गईं। कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ था। यीशु का शव नहीं मिला। बिजली की तरह चमकते कपड़े पहने दो आदमी उनके पास खड़े थे और बोले, तुम मुर्दों में जीवित को क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं है, वह उठा। याद करो कि उसने तुमसे कैसे कहा था कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन फिर से उठाया जाएगा। उसी दिन उनमें से दो लोग यरूशलेम से लगभग 7 मील दूर इम्मॉस नामक गांव को जा रहे थे। वे एक दूसरे से उस सब कुछ के बारे में बात कर रहे थे जो घटित हुआ था। जब वे आपस में बातें और चर्चा कर रहे थे तो यीशु स्वयं उनके पास आया और उनके साथ चला, परंतु वे उसे पहचानने से वंचित रह गए। यीशु ने मूसा और सभी भविष्यवक्ताओं से शुरू करके उन्हें समझाया कि सभी धर्मग्रंथों में उसके बारे में क्या कहा गया था। जैसे ही वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, यीशु ने ऐसा व्यवहार किया मानो वह और आगे जा रहा हो, परंतु उन्होंने उससे पुरजोर आग्रह किया कि हमारे संग ठहर, क्योंकि सांझ होने को है, दिन लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए वह उनके साथ रहने के लिए अंदर चला गया। जब वह उनके साथ मेज पर था तो उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, उसे तोड़ा और उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। वे उठे और तुरंत यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एक साथ इकट्ठे हुए पाया। वे अभी यह बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वे यह सोचकर चौंके और डरे हुए थे कि उन्होंने कोई भूत देखा है। उसने उनसे कहा, तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठता है? मेरे हाथों और मेरे पैरों को देखो, यह मैं ही हूं। मुझे छूकर देखो, भूत के पास मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा तुम देखते हो मेरे पास है। जब उसने यह कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए। और जब आनंद और आश्चर्य के कारण उन्हें अब भी विश्वास न हुआ तो उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास यहाँ खाने को कुछ है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके सामने खाया। उसने उनसे कहा, जब मैं तुम्हारे साथ था तब मैंने तुमसे यही कहा था कि जो कुछ मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखा है वह सब पूरा होना चाहिए। फिर उसने उनके दिमाग खोले ताकि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें। उसने उनसे कहा, यह लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सभी राष्ट्रों में उसके नाम पर पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। आप इन बातों के गवाह हैं। मैं तुम्हें वही भेजूंगा जिसका वादा मेरे पिता ने किया है, परंतु जब तक तुम ऊपर से शक्ति प्राप्त न कर लो तब तक नगर में रहो। जब वह उन्हें बैतनियाह के निकट ले गया तो उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब वह उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, उसने उन्हें छोड़ दिया और स्वर्ग में उठा लिया गया। तब उन्होंने उसे दंडवत किया और बड़े आनंद के साथ यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में रहकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। ल्यूक के मुख्य बिंदु। परमेश्वर पवित्र आत्मा की क्रिया द्वारा नासरत के यीशु के रूप में पृथ्वी पर आए। शैतान द्वारा प्रलोभित होने पर भी यीशु ने पाप रहित जीवन व्यतीत किया। उसने ऐसे कार्य किए जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था, उदाहरण के लिए किसी को मृतकों में से जीवित करना। पाप के प्रायश्चित के लिए एकमात्र बलिदान के रूप में अपने पापरहित मानव शरीर को परमेश्वर पिता को अर्पित किया। उनकी मृत्यु और दफन के बाद उन्हें पुनर्जीवित किया गया और 40 दिनों की अवधि में कई लोगों ने उन्हें देखा। यीशु का स्वर्ग में वापस आरोहण कई लोगों ने देखा।